के तू चला है जलती आंच पे, डर है कि पिघल न जाए सपने कांच के। एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के तू न दे किसी को बातों के जवाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है। तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज है, चीज है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है। सफर तेरा आया नहीं है हश्र तेरा, मिलती अगर है नाकामियां राहों में है जो दुश्वारियां। ये लिख ले तेरी कोशिशें जाएंगी ना खराब, तकलीफों के आगे कहीं खुशियां हैं बेहिसाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझ में उम्मीद है, उम्मीद है।
शांति। तो इस डायबिटीज होप रिट्रीट के 3 दिन के सीरीज का आज 3रा दिन है। तो आज के इसमें हम फैक्ट्स एंड फिक्शन, मतलब डायबिटीज के बारे में जो भी मिसकंसेप्शन से वहम है और क्या सच है उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे हमने गाना सुना है तो इसमें बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स है जो डायबिटीज को बहुत ही लागू करता है। मन लेके तू चला है जलती आंच पे, डर है कि पिघल न जाए अपने सपने कांच के। एक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप, कह के तू ना दे किसी को बातों के जवाब। तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है, जीत है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुझे उम्मीद है, उम्मीद है। तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज है, चीज है। सब कुछ मुमकिन है अगर तुम्हें उम्मीद है, उम्मीद है। तो क्योंकि डायबिटीज के बारे में जब भी स्पेशली फर्स्ट टाइम जब डायग्नोस होता है बहुत सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि पहले ही बहुत कुछ सुन चुके होंगे अपने रिलेटिव से या अड़ोस पड़ोस वाले कि ऐसा हो जाता है, वैसे हो जाता है, आपका लाइफ ऐसा हो जाता है। तो ये डर बैठ जाता है, उसी डर से वो कुछ भी इनिशिएशन नहीं लेते अपने परिवर्तन, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये जो भी मिथ है, ये जो भी वहम है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए नॉलेज की ज़रूरत है। इसीलिए बाबा भी पहले हमको ज्ञान देते हैं ना, क्योंकि जो भी हमारे पास्ट जो भी मिसकंसेप्शंस थे भक्ति मार्ग में वो बाबा अभी क्लियर कर रहा है ताकि हम आगे बढ़ सके। तो ज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जीवन में परिवर्तन लेके आने के लिए। तो आज के इसमें हम कुछ क्वेश्चन इसमें तो मिथ्स में बहुत सारे कुछ कवर हो चुके हैं, लेकिन आज वापस थोड़ा उसको रिवाइज करेंगे। एंड आप में भी किसी को भी एक क्वेश्चन, पहले हम जो ग्रुप में आया था एक क्वेश्चन लो शुगर के बारे में पूछ रहे थे। तो लो शुगर में भी पहले ये देखना है कि वास्तव में वो लो शुगर है कि नहीं, क्योंकि किसी किसी को ना 80 शुगर होता है तो भी समझते हैं कि वो लो शुगर है, 90 है तो भी समझते हैं वो लो शुगर है, लेकिन वो लो शुगर की कैटेगरी में नहीं आता है। लो शुगर मतलब 70 से नीचे, 70 से नीचे अगर जा रहा है, एंड वो भी ऐसा नहीं कि एक बार, अभी अभी दो दिन पहले एक यंग एक आई थी एक बहन, 18 ईयर्स की है, वो दो दिन से खाना नहीं खा रही थी, तो चेक करा के फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, फिर उसको बेहोश हो गई थी। शुगर चेक किया तो 46 था, उसको शुगर नहीं है लेकिन वो दो दिन से खाना नहीं खा रही थी तो इसीलिए शुगर डाउन गया है, तो वो बीमारी नहीं है, वो वहां पर आपने एनर्जी नहीं दिया बॉडी को इसीलिए लो शुगर में गई। तो ये एक नॉर्मल वेराइटी ऑफ लो शुगर होता है। दूसरे होते हैं अगर पेशेंट डायबिटिक है और इंसुलिन या दवाइयों पर है, और उस दवाई लेने के बाद उन्होंने खाना नहीं खाया प्रॉपरली, जितना रेगुलर खाना है उतना नहीं खाया है, कम खाया है या ना खाया है, तो लो शुगर में जाता है। तो ये कट ऑफ मार्क है, अगर 70 से नीचे जा रहा है तभी आपका लो शुगर माना जाता है, ये पहली पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, उसका कारण पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कि वो प्रॉपर इनटेक नहीं है उसके कारण हो रहा है, या फिर शुगर के मेडिसिन पर है और उसमें डोज एडजस्ट करना पड़ेगा, या तीसरा एक वैरायटी होता है जो पैंक्रियास रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब पैंक्रियास का शुगर के रिलेटेड नहीं है, पैंक्रियास का एक गांठ होता है जहां उस गांठ से इंसुलिन हार्मोन की ज्यादा उत्पत्ति होती है, तो उसकी वो तो बहुत रेयर है, इतना कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हमने नॉर्मल चीजों को रूल आउट कर दिया तो वो तीसरा जो है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा अगर पेशेंट बार बार लो शुगर में जा रहा है। तो पहली मिथ क्या होती है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम, जैसा ये पॉइंट डिस्कस हुआ था कि हमारे घर में किसी को भी शुगर नहीं है तो हमें कैसे हो गया, तो हमने इसका जवाब क्या देखा था क्लासेस में, हाँ, स्ट्रेस। आज के जमाने में स्ट्रेस का बहुत ज्यादा मेजर फैक्टर निकला है, और खान पान, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा प्रॉपर डाइट नहीं है, ज्यादा फास्ट फूड्स पे जा रहे और उसको हजम नहीं कर, मतलब एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो ये सब टॉक्सिन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इंसुलिन काम करना बंद हो जाता है और डायबिटीज चालू हो जाता है। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट क्या पूछते हैं कि मैं बहुत ज्यादा स्वीट्स खाती हूँ या खाता हूँ इसीलिए मुझे डर है कि मुझे शुगर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि आप स्वीट्स ज्यादा खाते हो तो शुगर हो जाएगा, या आप स्वीट्स नहीं खाते हो फिर भी शुगर हो गया। स्वीट खाने ना खाने का, शुगर होने ना होने का कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे इसका जैसे बेसिक रूल जो बताया था कल के सेशन में भी, जो हम खा रहे अगर हम उसको डाइजेस्ट कर रहे, मतलब उसको बर्न आउट कर रहे, आप जितना भी स्वीट्स खाओ जितना भी आम खाओ कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप इनटेक जो है उसको नहीं पचा रहे, उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप एक चम्मच का शुगर भी लेंगे तो भी हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे को, अगर भाई जी का क्वेश्चन है, अगर माँ बाप दोनों को है तो बच्चे को भी अगर होगा क्या, तो इसमें अगेन जीन्स है, उस बच्चे में तो डेफिनेटली जीन है शुगर डायबिटीज प्रोड्यूस करने का, लेकिन वो जीन जो है उसको ट्रिगर कौन कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, हमारा लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो वो ट्रिगर अर्ली एज में हो जाएगा। अगर ट्रिगर को हमने अवॉइड किया तो आप 60-70 तक भी पहुंचेंगे तो आपको शुगर नहीं आएगा। तो ये ट्रिगर के ऊपर है, कौन जाके उसको, जीन तो रहता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जीन एक्टिवेट होना है। जीन तभी एक्टिवेट होगा जब आपका लाइफस्टाइल से खराबी, मतलब जो भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं वो टॉक्सिन जाके वो जीन को स्टिमुलेट करता है। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हर डायबिटिक पेरेंट्स के बच्चों को शुगर होना है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि कुछ लोगों का ये भी होता है कि आज अभी हमको डायबिटीज की ये हो गई है तो फिर मुझे अभी स्वीट्स नहीं खानी है, मतलब बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शंस में रहना है, तो ये डर भी रहता है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि किसी किसी को ना बहुत पसंद होता है वैरायटीज में रहने में, लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगेन स्टार्टिंग स्टेज में रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं, जब आपका समझ लीजिए आज के दिन में आपका शुगर डायग्नोस हुआ और डायग्नोस के टाइम पर आपका शुगर 300-400 में है, तो स्टार्टिंग स्टेज में हम रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं कि आपको अवॉइड करना है, जैसे कि हाई कार्ब्स फूड्स, कल भी देखा ना हमने, बनाना हो गया, चीकू हो गया, आम हो गया, स्वीट्स, डायरेक्ट शुगर्स वाले स्वीट्स हो गए, ये सब चीज़ें स्टार्टिंग स्टेज में अवॉइड करते हैं। जैसे जैसे शुगर कंट्रोल में आता जाएगा, जैसे जैसे आपका एक्सरसाइज प्रॉपरली बढ़ता जाएगा, देन हम एक एक चीज को ऐड करते हैं, एक एक फ्रूट पहले नेचुरल इसको ऐड करते हैं, फिर जो भी स्वीट्स है ये अकेशनली ऐड करते हैं, जैसे कि महीने में एक बार हो गया ऐसे। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसको डायबिटीज हो गया वो कभी जीवन में वापस स्वीट्स नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग स्टेज में अगर उनका ऑलरेडी शुगर्स 300-400 है तो उस समय हम मना करते हैं, क्योंकि अंदर जो जमा हुआ शुगर है उसको पहले खाली करना है, ताकि हम फ्रेश जो दे रहे वो जो हमारा इंसुलिन है वो जो प्रॉपरली उसका उसका काम में आ जाए, देन वो जो भी हम खाते वो सेल्स के अंदर जाता है। क्योंकि जब 300-400 शुगर है उस समय इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो आप उसके ऊपर और उसको बोल रहे हो कि आप काम करो, मतलब हम फ्रूट्स दे रहे या कुछ भी हाई शुगर आइटम्स दे रहे, मतलब हम उसको बोल रहे कि आप एक्स्ट्रा काम करो, ऑलरेडी वो थक गया है, काम नहीं कर रहा है, ऑन टॉप ऑफ दैट आप बोल रहे हो कि काम करो, तो करेगा ही नहीं और बिगड़ता जाता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग स्टेज में रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है। और तो कुछ लोग सोचते हैं कि अभी हमें डायबिटीज हो गया तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है, एक्सरसाइज तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रिकॉशंस लेना है। कल भी हमने देखा है, जैसे एक्सरसाइज के पहले आप अपना शुगर चेक करो, शुगर डाउन तो नहीं है, अगर डाउन में है तो कुछ खा लेना, फिर एक्सरसाइज में जाना है, हल्का सा कुछ लेके फिर एक्सरसाइज में जाना है, अगर नॉर्मल है या ज़्यादा है तो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड डायबिटिक पेशेंट्स को जैसे लंबे समय में शुगर है तो उनमें ना एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, पाँव के नसों में जो नर्व्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट को जलन की सेंसेशन, चुभने की सेंसेशन, ये सब स्टार्टिंग स्टेज डायबिटीज जो नर्व्स पर अफेक्ट करता है, आगे जाते वो क्या और भी कंट्रोल में नहीं है शुगर, तो नेक्स्ट स्टेज होता है वो नंब हो जाता है, मतलब सुन पड़ जाता है, जैसे कि उनको लगता है कि वो कॉटन के ऊपर चल रहे, कॉटन के रुई के ऊपर चल रहे ऐसा लगता है, मतलब उनको फील ही नहीं होता है कि वो धरती पे पांव रखा है। उससे क्या होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है प्रॉपरली, जब मुझे लगता नहीं कि मैं कहाँ पांव रख रहा हूँ तो बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। देन और एक चीज होता है, जो भी अगर उनको चोट लगता है ना, सेंसेशन ना होने के कारण घाव रहता है और वो घाव चेक नहीं करते क्योंकि पेन नहीं है, पता नहीं चलता है, वो घाव बढ़ता जाता है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं। अभी हमारे पास ललिता सिस्टर भी है, वो इसमें स्पेशलिस्ट है, मतलब फुट केयर में, हमारे सारे डायबिटिक पेशेंट्स का फुट केयर वही देखते हैं, वो भी अभी कुछ समय के बाद आपसे मिलेंगे। तो ये एक है। नेक्स्ट है, कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तो मेरा बॉर्डरलाइन डायबिटीज है, मुझे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, डायबिटीज जब आएगा तब देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। प्री डायबिटीज, इसको प्री डायबिटीज कहते हैं, प्री डायबिटीज स्टेज में अगर आप अलर्ट हो जाएंगे तो आप जीवन भर शुगर को रोक सकते हैं अपने जीवन में आने से। तो प्री डायबिटीज का भी कल हमने क्राइटेरिया देखा था, अगर फास्टिंग शुगर 100 से 126 के अंदर है और अगर आपका खाने के बाद वाला शुगर 140 से 200 के बीच में है, रैंडम शुगर less than 200 है लेकिन more than 140 है, तो ये सब हमारे प्री डायबिटीज के लक्षण है, मतलब टेस्ट के रूप में। वैसे प्री डायबिटीज में कुछ ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिम्टम्स होते नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखने वाली चीज, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है प्री डायबिटीज स्टेज में सिम्टम जो होता है वो ये है, जैसे कि एक तो आपने, आपको तो ये रिस्क के बारे में पता चल गया कि पेरेंट्स में है या मेरा लाइफस्टाइल में स्ट्रेस ज़्यादा है, तो ये सब रिस्क फैक्टर से जो डायबिटीज आने का चांसेस है, उसके साथ साथ मेरा एक सिम्टम ऐसा आ सकता है, ऐसा नहीं कि सभी को ये सिम्टम आएगा। इसमें क्या होता है, सुबह सपोज उन्होंने, कोई व्यक्ति ने नाश्ता किया, फिर दोपहर में 1 o'clock के अराउंड उनका लंच टाइम होता है, ये जो 12 o'clock का टाइम होता है ना, लंच के जस्ट बिफोर 1 घंटा, उस समय उनको बहुत ज़्यादा भूख लगेगा, मतलब अनकंट्रोल भूख लगेगा, नहीं तो फिर पसीना छूटना, जैसे कि जैसे एक पेशेंट लो शुगर का जो एक्सपीरियंस करता है ना, उस तरह की सिम्टम्स वो एक्सपीरियंस करते हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ प्री डायबिटिस। ऐसा क्यों हो रहा है उन लोगों में? प्री डायबिटिस में, प्री डायबिटिस क्या चीज़ है, वहां पर इंसुलिन काम करना बंद कर दिया, मतलब प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। उसके पहले के स्टेज में क्या होता है, जैसे जैसे हमने कल देखा है, जितना जितना कार्ब कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट्स हम ज़्यादा दे रहे और इंसुलिन काम करना धीरे धीरे बंद हो रहा है ना स्टार्टिंग स्टेज में, उस समय पैंक्रियास क्या करता है, और इंसुलिन प्रोड्यूस करना चालू करता है ताकि हम शुगर को लेवल में लेके आ जाए। तो ये और प्रोड्यूस करने में क्या होता है, इंसुलिन लेवल्स की बढ़ रही है ना। जब वो इंसुलिन लेवल्स की बढ़ जाती है, जैसे कि सुबह मैंने नाश्ता किया 8 बजे 8:30 बजे, फिर ऑलरेडी मैं प्री डायबिटिक रेंज में हूँ, तो मेरा जितना खाने के टाइम पर मेरा जितना इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ वो प्रॉपरली काम नहीं किया, तो पैंक्रियास क्या किया, और एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस किया, तो अभी जितना खाना है उससे ज़्यादा इंसुलिन बन गया शरीर में, है ना। वो कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ और शुगर को नॉर्मल में लेके जाऊँ। तो ऐसा करते करते बिफोर लंच तक इंसुलिन की लेवल ज्यादा है और ग्लूकोज की लेवल नीचे में है, तो इसीलिए उस समय पे वो व्यक्ति को वो लो शुगर जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो ये वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर प्री डायबिटीज। ऐसा कभी किसी को होता है तो आपको जाके डॉक्टर के पास संपर्क करना है, ताकि इसके लिए और प्री डायबिटीज के लिए एक और अलग सा टेस्ट होता है, उसको हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जानना चाहते हैं कि मुझे शुगर है या नहीं है, या फिर मैं प्री डायबिटिस में हूँ, तो उसके लिए ये टेस्ट है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, फास्टिंग में आपको लैब में जाना है और वहाँ पर ग्लूकोज का पानी दिया जाता है, वो कैलकुलेटेड है, मतलब जो एक व्यक्ति को जितना नॉर्मल शरीर पचा सकता है 75 grams ग्लूकोज का पाउडर वो लोग पानी में भिगो के देते हैं, तो वो लेने के बाद 1 hour and 2 hours में वापस शुगर चेक करते। अगर उसमें जैसे हमने रेंज देखा है 140 से 200 के बीच में 2 घंटे के बाद का शुगर है, तो मतलब आपका प्री डायबिटीज रेंज में है। क्योंकि खाने नॉर्मल नाश्ते में क्या होते हैं, एक दिन हम थोड़ा खाते, एक दिन हम ज्यादा खाते, तो वो प्रॉपर हमारा पता नहीं चलता है कि मैं प्री डायबिटीज में हूँ या नहीं हूँ। लेकिन ये जो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन जो बनाया हुआ है, वो रिसर्च करके बनाया हुआ है, तो जब हम वो लेंगे उसके हिसाब से जो रिजल्ट निकलेगा वो प्रॉपर बॉडी का टॉलरेंस लेवल बताता है। तो ये एक टेस्ट है जो आप जांच करवा सकते हैं। कल भी हमने एक एग्जांपल देखा, बहुत सारे लोग सोचते हैं एक बार मैंने दवाई चालू कर दिया तो जीवन भर लेना ही पड़ेगा एंड अदरवाइज मेरा कुछ नहीं होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने कई सारे एग्जाम्पल्स इन 2 दिनों में बताया है, जो बहुत एज्ड है वो भी रिटर्न वापस नॉर्मल में आ गए थे, जो बहुत यंग है उनका कुछ हो नहीं रहा था। तो इट ऑल डिपेंड्स हमारा लाइफस्टाइल में कितना उसको प्रॉपरली डॉक्टर का एडवाइस फॉलो कर रही हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और डायबिटीज पेशेंट्स को शुगर नहीं, सॉरी फ्रूट्स नहीं खाना है, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, ये ओनली स्टार्टिंग स्टेज में रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे जैसे कंट्रोल में आता जाएगा वैसे वैसे हम फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। वैसे भी अगर स्टार्टिंग स्टेज में भी ना, हम कुछ कुछ फ्रूट्स, अगर पेशेंट को बहुत पसंद है फ्रूट खाना, तो बहुत ही लाइट फ्रूट्स जैसे कि एप्पल हो गया, ऐसे कुछ चीज़ें 1 piece या 2 piece ऐसे अलाउ करते हैं, ऐसे नहीं कि पूरा ही बंद करते हैं। डायबिटीज कुछ सीरियस नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग लाइट लेते हैं, बहुत सारे लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं, मतलब जिनको डायबिटीज कंफर्म हो गया है और शुगर 200-300 से ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, फिर भी उनको सिम्टम्स कुछ नहीं होता है ना, कहीं दर्द नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए वो बहुत ही लाइट लेते हैं। हाँ, ये सही डराते हैं। डॉक्टर्स लोग ऐसे ही डराते, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे सोचते। लेकिन क्या होता है, डायबिटीज को साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर हर एक ऑर्गन को जाके अफेक्ट करना चालू कर देता है। इसमें मेन तीन ऑर्गन्स हैं ऐसा जो अफेक्ट करता है। एक्चुअली हमने कॉम्प्लिकेशन इस सीरीज में नहीं ले पाए क्योंकि टाइम की कमी थी, तो इसमें मैं बहुत ही ब्रीफली बता दूंगी। तीन ऑर्गन्स जो डायबिटीज से फर्स्ट अफेक्ट होने वाले हैं, एक है आंख, दूसरा किडनी, तीसरा पांव। तो ये तीन चीजें, आपको अगर शुगर है तो आपको ईयरली वंस चेकअप करवाना ही है। अगर उसमें कुछ निकला प्रॉब्लम तो एटलीस्ट 3 months to 6 months उसका फॉलोअप करते रहना है। आंख में ऐसा नहीं कि चश्मा है या नहीं है, वो वाला टेस्ट नहीं है। आंख में जो अंदर का एक लेयर होता है उसको हम रेटिना बोलते हैं, वो रेटिना को जाके अफेक्ट करता है, एंड वो रेटिना के कारण ही हम देख पाते हैं। अगर वो अफेक्ट हुआ तो पहले धुंधला धुंधला दिखेगा, नहीं तो फिर आंखों के सामने काले दाग जैसे दिखेंगे। ये सब मतलब अंदर रेटिना का। ये सिम्टम्स भी कब आएंगे, जब वो डैमेज मॉडरेट टू सिवियर स्टेज में जाता है तब सिम्टम्स आते, माइल्ड स्टेज में कोई सिम्टम नहीं होता है। और एक बार जो रेटिना का स्पेशली, एक बार जो इफेक्ट चालू हुआ उसको हम सिर्फ रोक सकते हैं, वापस लेके नहीं आ सकते, आप कुछ भी कर लो। तो इसीलिए आई चेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डायबिटिक पेशेंट्स। जब हम पूछते हैं कि आपकी आंख की जांच हो गई, तो बोलते हैं हाँ आंख की जांच हो गई। फिर हम और डीप में पूछते हैं तो बोले हाँ हमारे चश्मा का तो नंबर कुछ नहीं है। लेकिन वो नहीं है आंख की चेकअप, आंख की चेकअप होती है रेटिना का। ये आपको खास जाके चेक करना ही है। वो अभी तक नहीं, आई ट्रांसप्लांटेशन अभी तक नहीं आया है। और किडनी का स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन लीकेज का फर्स्ट साइन होता है। तो डॉक्टर्स यूजुअली जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनका प्रोटीन लीकेज कुछ है क्या, किस स्टेज में है लीकेज, अगर वो ज्यादा लीक होता जाएगा तो पाँव में सूजन आ जाना, ये सब सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते। फिर पाँव का जो थर्ड ऑर्गन है हमारे पाँव के नसों का, तो पाँव में भी एक होता है नर्व्स का, जो उस इफेक्ट होता है तो फिर बर्निंग सेंसेशन ये सब आते हैं और घाव हील नहीं होता है। और दूसरा ब्लड सप्लाई, पाँव का जो ब्लड सप्लाई है वो भी अफेक्ट करता है। तो जब ब्लड सप्लाई नहीं होता है और घाव है तो क्या होता है, वो हील नहीं होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है हीलिंग के लिए। तो मल्टीपल रीजन से वो वूंड हीलिंग में डिले हो जाता है। पूरा डायबिटिस पेशेंट, नेक्स्ट मिथ है कि डायबिटिक पेशेंट्स को पूरा ही मतलब अनाज बंद करना है, ये भी मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोर्शन, कितना पोर्शन में हम ले रहे वो मायने रखता है। एंड नेक्स्ट है कि अगर कोई बहुत ही ओवरवेट है या ओबीज है उनको शुगर डेफिनेटली होगा, ऐसा भी नहीं है। अगेन मैंने जो कहा कि जीन्स भी एक फैक्टर होता है। ये जो ओवरवेट और ओबेसिटी लीडिंग टू डायबिटीज जो है यूजुअली फॉरेन कंट्रीज में होता है, लेकिन इंडिया में ना लीन डायबिटीज बोलते हैं हम, मतलब देखने में बहुत पतले होते हैं लेकिन उनको डायबिटीज हो जाता है। तो इसका रीजन क्या है, एक फैट डिपोजिशन में भी दो वेराइटीज होते हैं। एक होता है जो हमारे स्किन के अंदर, स्किन के नीचे जो डिपॉजिट होता है वो सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं हम, वो इतना हानिकारक नहीं है। लेकिन जो हमारे अंदर ऑर्गन्स है ना पेट के स्पेशली, वो ऑर्गन्स के अंदर अंदर जो फैट डिपॉजिट हो रहा है जैसे कि लिवर में हो गया, तो ये जो हम विजरल ओबेसिटी बोलते हैं वो इंडियंस में ज्यादा है। और वो विजरल ओबेसिटी ज्यादा नुकसानकारक है, वो टॉक्सिन्स को ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए बाहर देखने में भले पतले है लेकिन अंदर का जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड डिपॉजिशन है, उसके कारण हो रहा है। वो जब हमारा जो भी खान पान है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर रहे तो वो जाके फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। एक्स्ट्रा जो भी ग्लूकोज है जो यूज नहीं हो रहा है वो जाके फैट के रूप में डिपॉजिट होता जाता है। यूज तो होता है जब आप फास्टिंग में होते हैं तब यूज होता है, लेकिन फास्टिंग भी आप पूरा तो नहीं कर पाएंगे, एक दिन करेंगे, मैक्स टू मैक्स 2 दिन करेंगे। उसके साथ साथ आप कितना ले रहे हो, एवरीथिंग इज बैलेंस, कितना ले रही हो और कितना उसको यूज कर रही हो। एक्सरसाइज से उसको बर्न आउट कर सकते हैं, उसको पचा सकते हैं। अगर नहीं कर रहे ओनली इनटेक में ही है तो फिर नहीं होगा, यूज नहीं होगा वो. एंड पीपल सोचते पीपल हर एक मतलब ये भी बहुत सारे हमारे पेशेंट्स से हम सुनते हैं कि जैसे ही डायबिटीज डायग्नोस हो जाता है ना तो वो पूछते हैं कि हमने तो देखा कि हमारे रिलेटिव को किडनी फेल हो गया, डायलिसिस में चले गए, मुझे तो डर है कि मेरा भी किडनी चला जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप प्रॉपरली, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि टैबलेट्स लेने से मेरी किडनी खराब हो जाएगी इसलिए मैं टैबलेट्स नहीं लूंगी. लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि हाई शुगर से ज्यादा नुकसानकारक है किडनी के ऊपर, टैबलेट से नुकसानकारक नहीं है. कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बाकी बीमारियों के लिए, कुछ और बीमारियों के लिए जो मेडिसिन यूज किया जाता है उससे किडनी के ऊपर असर होता है. लेकिन लोगों में ये एक मिथ है कि हर एक एलोपैथी टैबलेट जाके किडनी पे असर करता है, ये गलत है. कुछ ही ऐसे मेडिसिन है जो किडनी को नुकसानकारक होते हैं, जैसे कि पेन किलर्स. अगर आप ज्यादा पेन किलर्स ले रहे हो तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद आपका किडनी खराब हो जाएगा. कुछ कीमोथेरेपी कैंसर के पेशेंट्स को जो देते हैं उसमें कुछ ऐसे कुछ वेराइटीज है जो जाके नुकसान करते हैं. तो ऐसा नहीं कि हर एक मेडिसिन एलोपैथी में जाके किडनी में नुकसान करता है, ये गलत है. तो उस मिसकंसेप्शन के कारण कुछ भी टैबलेट नहीं लेते, ये भी नहीं लेते हैं, डायबिटीज का भी नहीं लेते हैं. तो उससे क्या हो गया, शुगर बढ़ता ही जाएगा. जब शुगर ज्यादा लंबा समय बढ़ा हुआ रहता है तो वो जाके किडनी को खराब करता है. फिर उस समय आते हैं हमारे पास, फिर हम दवाई चालू करते हैं, तब बोलते हैं कि हमने दवाई लिया फिर भी हमारा किडनी फेल हो गया. लेकिन ये नहीं सोचते कि आप किस टाइम पे आए दवाई लेने के लिए. ऑलरेडी जो खराब स्टेज में है उस स्टेज में आके आप ट्राई कर रहे हो और आप रिजल्ट चाहते हो, कैसे होगा. तो ये सब मायने रखते हैं कि आपका किडनी फेल्यूर में जाने के लिए क्या क्या कारण है. और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अभी डायबिटीज हो गया तो हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कुछ एग्रेसिव वाला एक्टिविटीज नहीं कर सकते. ऐसा भी कुछ नहीं, डायबिटीज पेशेंट इज इक्वल टू नॉर्मल पर्सन, कोई नहीं है मतलब कोई एक्स्ट्रा उनको ये चीज नहीं है. सिर्फ आपका लाइफस्टाइल को आपको प्रॉपरली उसको अरेंज करना है बस. ऐसे हमारे बहुत ही सारे हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टाइप वन है. टाइप वन मोस्ट डिफिकल्ट डायबिटीज है, क्यों, थोड़ा भी इधर उधर खा लेते हैं तो उनका शुगर बढ़ जाता है. तो इंसुलिन उनको दिया जाता है, उनको तो चारों टाइम इंसुलिन रहता है, लेकिन इंसुलिन चारों टाइम लेते हुए भी क्योंकि खुद का इंसुलिन बॉडी में ना होने के कारण थोड़ा भी अगर एक्स्ट्रा एक स्नैक ले लिया तो शुगर बढ़ जाता है. तो टाइप वन इज मोस्ट डिफिकल्ट डायबिटीज टू कंट्रोल. लेकिन टाइप वन डायबिटीज के साथ रहते हुए हमारे देश में भी इतने सारे लोग हैं जो बहुत फेमस है. और इवन हमारे देश के लोग अगर हम देखा जाए तो फिल्म एक्टर्स में कमल हासन को बहुत सारे लोग जानते होंगे जो साउथ इंडियन के फेमस एक्टर है, और नॉर्थ में सोनम कपूर, शी इज ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस, एंड उनको भी टाइप वन डायबिटीज. लेकिन पता भी नहीं चलता कि उन लोगों को वो बीमारी है, मतलब इतना एक्टिव रहते हैं, अपने फील्ड में एक्टिव रहते हैं. और पाकिस्तान के बॉलर जो है वसीम अकरम, उनको भी टाइप वन डायबिटीज है, वो स्पोर्ट्स खेलते हैं. ऐसे और भी अदर स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे हैं जो फॉरेन कंट्रीज वाले हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि डायबिटीज है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे. और डायबिटीज लोगों को ज्यादा बीमारियां आ जाती है ये भी ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो डेफिनेटली यस, यू आर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस. शुगर कंट्रोल में नहीं है तो आपका इम्यून सिस्टम डाउन जाता जाएगा, अगर शुगर कंट्रोल में है तो आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा. और कुछ लोग सोचते कि अरे इसको डायबिटीज हो गया मुझे भी हो जाएगा, मतलब साथ में रहने से. ऐसा नहीं है, डायबिटीज कंटेजियस नहीं है. इसीलिए डायबिटीज को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. एक है कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब जैसे कोविड है, खांसी करेंगे, टीबी हो गया, तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीजेस है, हमारे छींक से या खांसी से ट्रांसमिट होने वाले डिजीजेस को कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. लेकिन ये बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में आते हैं, इससे साथ में रहने से कुछ लगेगा नहीं। तो ये भी एक वहम है, जब हम किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा शुगर है, मतलब रिसेंटली डायग्नोस हुआ और बहुत ज़्यादा शुगर है, टैबलेट सब बंद कर चुके हैं, और उनको उनको हम थोड़े समय के लिए इंसुलिन चालू करते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए और ज़्यादा उसका नुकसानकारक इफेक्ट्स जो है वो शरीर पर ना पड़े। तो स्टार्टिंग स्टेज में मे बी 2-3 वीक्स के लिए हम इंसुलिन पर रखते हैं, लेकिन इंसुलिन के बारे में इतना कुछ सुन चुके होते हैं तो इसीलिए सोचते कि अरे मेरे पास, मतलब मुझे इंसुलिन चालू किया मतलब मेरा फाइनल स्टेज में चला गया। ये बहुत बड़ा मिथ है, हाँ बहुत बड़ा भ्रांति है, ये सच नहीं है। वो एक्चुअली डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करते हैं, जब कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं ना, वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये कुछ समय के लिए ही चलेगा, वापस आप टैबलेट्स पे आ जाएंगे। कभी कभी टैबलेट्स के साथ हमको देना पड़ेगा। लेकिन जब क्रोनिक डायबिटीज है, जैसे कि लंबे समय से प्रॉपर टैबलेट्स नहीं ले रहे, खान पान का कुछ परहेज नहीं है, शुगर अनकंट्रोल्ड ही है, तो पैंक्रियास तो काम करना बंद कर देंगे, इंसुलिन प्रोड्यूस करना भी बंद कर देते हैं, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस समय इंसुलिन परमानेंट होता है, उस समय भी सीरियस स्टेज नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप उस समय भी सतर्क रहेंगे, प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तो उस समय भी कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय इंसुलिन लिया तो सीरियस है। लाइफस्टाइल, इफ आपका लाइफस्टाइल ठीक है, इट इज रिवर्सिबल। देखते कि डायबिटीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्या, ये कल भी हमने देखा है ना। तो हमारा जो भी एक्सरसाइज है या रिस्क फैक्टर्स, जो हमने एक रिस्क फैक्टर्स का स्कोर देखा ना, इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर, जिसमें हमारा एज का स्कोर देखा है, फिजिकल एक्टिविटी का स्कोर, वेस्ट सरकमफ्रेंस का स्कोर, ये सब स्कोर मिला के मैं कुछ रिस्क फैक्टर में हूँ क्या, मेरा रिस्क फैक्टर कितना है। जब रिस्क फैक्टर पता चल जाता है तो अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है मुझे ऐसे ऐसे हम मेरे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ताकि उस स्टेज में अगर आपने एक्शन लिया तो प्रिवेंट कर सकते हैं, डायबिटीज नहीं आएगी। हाँ वही न्यूरोपैथी अभी जो मैंने बताया, हाँ हो सकती है अगले, लेकिन वो ऑलरेडी डायबिटिक है। तो पाँव की जलन ओनली डायबिटीज में होता है ऐसा नहीं है, वो वन ऑफ द सिम्टम है डायबिटीज का। वैसे B12 डेफिशिएंसी में भी पाँव में जलन होती है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और सभी प्रकार के डायबिटीज एक जैसा है, ये भी गलत है, क्योंकि हमने देखा type 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता है तो उनको लाइफ लॉन्ग इंसुलिन पर ही रहना है, type 2 डायबिटीज जिनको इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है लेकिन कुछ हद तक ही काम करता है तो उनको टैबलेट्स देना पड़ेगा। तो अलग अलग डायबिटीज है, जेस्टेशनल प्रेगनेंसी वाला डायबिटीज, अलग अलग डायबिटीज में अलग अलग ट्रीटमेंट। और type 1 डायबिटीज सिर्फ यंग में आएगा ऐसा नहीं है। अभी एक और इसके है जिसको हम लाडा बोलते हैं, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन एडल्ट्स, मतलब जैसे type 1 का है तत्व, मतलब इंसुलिन न प्रोड्यूस होना, वैसे ही 30 ईयर्स के अराउंड वो चालू होता है, सेम टू सेम जैसे type 1 बच्चों में चालू होता है ना, उसी प्रकार का type 1 30 ईयर्स में चालू होता है, उसको लाडा बोलते हैं। तो ये भी काफी केसेस अभी बढ़ने लगे हैं, हम देखने लगे हैं। एंड type 2 डायबिटीज ओनली एल्डरली को होंगी या ओनली बुजुर्ग को होंगे ऐसा नहीं है, बच्चों में भी, यंग एडल्ट्स में भी अभी चालू हो गया है। और कि ओनली type 1 डायबिटीज पेशेंट्स को इंसुलिन की जरूरत है ऐसा नहीं है, type 2 डायबिटीज वालों को भी लॉन्ग टर्म में जाके इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। सभी डायबिटिक पेशेंट्स को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो शुगर फ्री, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि शुगर फ्री का मतलब शुगर फ्री ले सकते हैं, ले तो सकते हैं लेकिन जितना हो, मतलब वो मैं शुगर फ्री जो पिल्स होते हैं उसके बारे में बता रही हूँ, वो तो जितना कम मात्रा में लेंगे उतना बेटर है, अवॉइड कर सकते तो वो बेस्ट है। और दूसरा यहाँ पर हम फोकस करना चाहते हैं शुगर फ्री फूड्स जो मार्केट में मिलते हैं, है ना। पेशेंट बोलते ये तो शुगर फ्री था इसलिए मैंने खा लिया, तो शुगर फ्री तो था, लेकिन शुगर फ्री का उनका मतलब क्या है कि उन्होंने डायरेक्ट चीनी ऐड नहीं किया, लेकिन जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कि मैदा से बना हुआ है, तो मैदा जाके क्या बनेगा अंदर? ग्लूकोज ही तो बनेगा, है ना? तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कितना है उस चीज में, वो मायने रखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चीनी नहीं डाला है तो हम कितना भी चाहे खा सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स कितने हैं उसमें, वो जाके फिर वापस ग्लूकोज ही बनेगा। तो इसमें एक होता है शुगर फ्री, मतलब बहुत ही मिनिमल उसमें ऐड किया गया, लेस देन 0.5 ग्राम्स उसमें ऐड किया होता है, तो इसीलिए उसको शुगर फ्री बोलते हैं। दूसरा होता है रिड्यूस्ड शुगर, लेबल्स में, मतलब फूड लेबल्स में जो लिखते हैं ना, उसका मैं बता रही हूँ। जब उन्होंने लिखा शुगर फ्री, मतलब शुगर का कंटेंट लेस देन 0.5 ग्राम्स है। अगर रिड्यूस्ड शुगर लिखा है तो मतलब 25%, जो सपोज उन्होंने कुछ एक स्वीट ऐसा कुछ एक आइटम बनाया है जिसमें उन्होंने लिखा है रिड्यूस्ड शुगर, और सेम आइटम नॉर्मल वेराइटी में भी है, तो नॉर्मल वेराइटी से देखा गया तो इसमें 25% कम शुगर है, उसका मतलब है रिड्यूस्ड शुगर। अगर किसी लेबल में है रिड्यूस्ड शुगर, मतलब 25% कम मात्रा में डाला गया है। दूसरा है नो एडेड शुगर, नो एडेड शुगर भी एक वहां पर लिखा हुआ रहता है, मतलब जब बनाया जाता है, मतलब जो भी चीज है जब बनाया जाता है तो हमने एक्स्ट्रा शुगर 1% भी ऐड नहीं किया, लेकिन उसमें फिर आपको कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट देखना है क्योंकि वो जाके वापस शुगर बनेगा। तो एक बार एक पति अपने बीवी से बोलता है कि मुझे फीकी चाय पीने के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो बीवी बोलती है अलग अलग चाय बनाने की मेरे पास टाइम नहीं है, आप लड्डू खा के चाय बना लेना, चाय पी लेना, आपको फीकी लगेगी। हाँ, और एक पेशेंट होता है कि रोज जाके अपने किचन में चीनी का डब्बा देख के फिर जाके सो जाता है, ऐसा रोज करता रहता है। तो उसके बीवी पूछते आप ऐसा क्यों कर रहे हो, रोज जाके चीनी के डब्बे को क्यों देख रहे हो? तो वो बोलता है कि जब मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला है कि आप रोज अपने शुगर को चेक करो। अभी हमारे पास ललिता बहन है, वो अभी हमको जो फूड केयर का जो इस कैंप में या वैसे भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो ट्रीटमेंट चलता है ये करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता देंगे। हाँ, वैसे तो भेजा है, वापस एक बार बता देंगे। तो ये कैंप जो है डायबिटीज का, हर महीने 4 दिन का होता है, हर महीने होता है 4 दिन का, यूजुअली सेकेंड वीक नहीं तो फिर थर्ड वीक में, इन दोनों हफ्ते में कोई एक वीक में हम रखते हैं। और संडे से चालू होता है, संडे सभी आ जाएंगे, फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपका टेस्टिंग होता है, फिर थर्सडे रिटर्न। तो ये जो 3 दिन है उसमें हम आपको डाइट, एक्सरसाइज, ब्लड टेस्ट, फुल आई चेकअप, डेंटल चेकअप, फुट केयर, ये सब चीज़ें इसमें हो जाते हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन क्लासेस, डायबिटीज़ के बारे में जानकारी, स्पिरिचुअल काउंसलिंग, ये सब भी इंक्लूडेड है। कोई एक आइडियल है कि डायबिटिक पेशेंट के साथ एक अटेंडर आना ज़रूरी है, क्योंकि यूजुअली वाइफ एंड हस्बैंड होते हैं, है ना? तो जो खाना बनाने वाले हैं उनको भी तो पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए जाने के बाद, क्यों पेशेंट ने तो समझ लिया लेकिन बनाने वाले ने समझा नहीं, तो भी मुश्किल हो जाएगा ना जी। हाँ हाँ, कैंप कर सकते हैं, कैंप कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये जो 4 दिन का कैंप है ये पूरा रेजिडेंशियल कैंप है, मतलब आप संडे हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल यहाँ हमारा जो है यहाँ पर आएंगे, यहाँ एडमिट हो जाएंगे, फिर थर्सडे मॉर्निंग को ही आपका डिस्चार्ज होगा। तो 4 दिन आप हॉस्पिटल में ही ठहरेंगे। चाबी ललिता बहन हमसे 5-10 मिनट बात करेंगे।
ओम शांति। डायबिटीज में फूड केयर की आवश्यकता क्यों है? डायबिटीज में फूड केयर की आवश्यकता क्यों है? सिर्फ डायबिटीज में ही नहीं, लेकिन जो नॉन डायबिटिक है उनको भी फूड केयर की आवश्यकता। शुगर बीमारी का एक ही है, शुगर आप चेक करते तो क्या चेक करते हो? ब्लड चेक करते हो और ब्लड आपके शरीर में कौन सा हिस्सा है जिसमें ब्लड की ज़रूरत नहीं है, पूरे शरीर में ब्लड की आवश्यकता है। तो ब्लड जहाँ जहाँ तक पहुँचता है वहाँ वहाँ आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन पैरों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होता है? जब हम 18, 19, 16, 17 साल के होते तब तक हमारा पैरों की जितना भी बढ़ना है उतना बढ़ता है। बाकी उसके बाद जब हम स्कूल में कॉलेज में हैं तो उसके बाद क्या होता है, हम ऊपर बढ़ते हैं जब हम ऐसे होते हैं तब, लेकिन बाद में हम ऐसे होते हैं। लेकिन हमारा तो एक्स्ट्रा वेट कहाँ होता है फिर? हमारे पैरों पर। अगर हमारे एक्स्ट्रा वेट हमारे पैरों पर है तो हमको हमारे पैरों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते है ना। पूरा दिन हम क्या करते हैं, चेहरे को कितनी बार मिरर में देखते हैं, पैरों को कितनी बार देखते हैं, कौन देखता है पैरों को, या बैठे उसमें से कितने लोग हैं जो पैरों को देखते हैं। अभी बहुत सारे लोगों का ऐसे हो रहा है, अभी मैं डायबिटिक पेशेंट ही नहीं देख रही हूँ, नॉन डायबिटिक भी देख रही हूँ, तो उसमें मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है। अभी मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी, लेकिन अभी एयरफोर्स का एक बड़ा ऑफिसर आया था, उसके पैरों में वो मुझे दिखा रहा है कि दीदी इधर काला हो गया है, क्यों हो गया है? मैंने उनको पूछा कि आप पैर में कभी साबुन लगाते हो? तो बोले नहीं नहीं मेरी वाइफ हमेशा बोलती है लेकिन मैं कभी साबुन नहीं लगाती। तो साबुन नहीं लगाएंगे पैर में फिर आपका मैला सारा जमा होते हो तो एक लेयर बन जाता है और वही स्किन डिजीज का रूप ले लेता है। इसके लिए आपको अपने पैरों को बहुत अच्छी तरह से, पैरों को साबुन, अपने बी के भाई बहने बताते हैं कि नहीं ऊपर से शावर, जितना पानी पैरों में गिरता है उतना ही हम पैर धोते हैं, बाकी एक्स्ट्रा पैरों के लिए मेहनत नहीं करते। एक भाई ने मुझे बताया कि बोले मेरी मम्मी बोलती है लोगों को मुंह में लगाने के लिए साबुन नहीं मिलता, आप पैरों में क्यों लगा रहे हो? तो ना ये सब हमारे यहाँ, तो फिर पैर कैसे आपके ठीक हो गए? जिसको आप पूरा दिन आप किसके ऊपर खड़े, पैरों के ऊपर खड़े हो, तो वो हम ध्यान नहीं दे रहे। तो पैरों का नहीं, मालिश तो छोड़ो, मालिश तो एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन अब पैरों को आप स्नान कर रहे हो तो पैरों को वॉश करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ डायबिटिक नहीं, नॉन डायबिटिक पेशेंट को भी पैरों में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं, और अगर पैरों में कब हमको याद आता है, जब हमको पैरों में कुछ प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम भी कौन सा, हम व्हील चेयर पर चले जाए या फिर बेड रिडन हो जाए, एक ग्लास पानी के लिए मोहताज हो जाते, किसी के पास मांगना पड़ता है, तब पता पड़ता है कि हमारे पैरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। उसके पहले किसी को भी याद नहीं होता, हालांकि एक साथ कुछ भी नहीं होता है, अचानक से एम्पिटेशन हुआ ऐसा कभी भी नहीं होता है। कॉर्न हो गया है, कैलस हो गया है, इनग्रो नोटे और टो नेल इनग्रो हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है कि हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते। पैरों को कभी भी हम चेक नहीं करते, जो कि हमको रोज करना, लेकिन हम कभी हमारे पैर में पता पड़ रहा है कि कहीं कुछ चुभन हो रहा है, नेल में प्रॉब्लम हो रहा है, पैरों के नीचे दर्द हो रहा है, एड़िया फट रही है, लेकिन हम उसके, तो हमको डायबिटीज में क्या करना है क्या नहीं, मेरे पास एक क्लास है 2 घंटे का, लेकिन मैं आपको 15 मिनट में सुनाने वाली हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट और शॉर्ट में सुना रही हूँ। तो हमको क्या करना है क्या नहीं करना है और डायबिटीज पेशेंट के लिए क्या डेंजर है वो मैं आपको, हमको क्या करना है, रोज़ हमको अपने पैरों को अच्छी तरह से चेक करना है। और चेक क्या करना है, सिर्फ चेक करना है, चेक करना है मैंने क्या करना है, आपको देखना है आपके पैर में कहीं कलर चेंज तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारे नाखून जो है वो टेढ़े तो नहीं हो रहे हैं, हमारे पैरों में क्रैक्स हैं, ये सब देखना। नाखून हमको निकालने हैं तो कैसे निकालने हैं, नाखून निकालने वक्त क्या करना है, हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जब हम नाखून जो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, नेल कटर से निकालते हैं, ब्लेड से भी निकालते हैं, कैंची से भी निकालते हैं, लेकिन क्या करते हैं 6 महीने तक हमको नाखून निकालने का टाइम नहीं मिलता है, 6 महीने तक हम, तो हम कितने पेशेंट का ऐसे देखा है 6 महीने तक नेल कटिंग नहीं करेंगे, और जब करेंगे तो आगे के 6 महीने का कर देंगे, तो क्या होगा, क्या होगा, एक साथ ही 6 महीने का आगे का कर देंगे, तो इतना अंदर तक जाते हैं, तो ये आप सबने देखा होगा यहाँ से ब्लीडिंग शुरू होना शुरू होता है, और इनग्रो टोनेल जो होता है इसी के कारण वो ज़्यादा करने से क्या होता है, जो हमारा ये नाखून है यहाँ से कट कर दिया तो क्या हो जाता है, फिर वो जब ये आसपास का जो मसल्स है उसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि जगह हो गया उसके ऊपर आ जाता है, और फिर नेल जब बढ़ता है तो उसके अंदर घुसना शुरू हो जाता है। इसके अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, और जब आपका नेल इतना हार्ड है और वो उसके अंदर घुसने लगेगा तो क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू होता है, इन्फेक्शन शुरू होता है। और कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो वो रोएगा ज़रूर, वो उसके वजह से डॉक्टर के पास जाओगे, सर्जन के पास जाओगे तो वो क्या करेंगे, उसके लिए बहुत लंबी लिस्ट देंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उसके बाद उसको नेल को ओटी में जाके उसको पूरा नेल उसको रिमूव कर देंगे, और पेशेंट बेड रिडन होगा, फिर उसके बाद बहुत सारा ड्रेसिंग चलेगा। इसके लिए ये करने की ज़रूरत नहीं अपने, या ये नेल कटिंग करने के लिए या इनग्रो नेल को, इनग्रो नेल हम उसको हम ठीक कर सकते हैं, ऐसे अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अपने यहाँ ये सब होता है, बिना इसके सर्जरी के हम कॉर्न भी निकाल सकते हैं। ये कैलोसिटीज है, क्रैक्स है, अगर क्रैक्स तो देखा जाए तो सभी के पैर में क्रैक्स होते ही है, तो क्रैक्स ना हो इसके लिए क्या करना है मैं आप लोगों को तुरंत ट्रीटमेंट बता देती हूँ, ताकि फिर ये ना हो कि क्या करना है। तो क्या करना है, आपको क्रैक्स है, किसी को कितने भी बड़े क्रैक्स है तो आपको क्या करना है, हम अपना हमारे यहाँ आने के बाद तो हम वाटर मसाजर में आपके पैरों को डाल के अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके उसको ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप घर में हो तो आपको गुनगुने पानी में एक माइल्ड शैम्पू डाल के आपको 15 मिनट तक अपने पैरों को भिगाना है। उसके बाद आपको टर्किस के टॉवल से आपके पैरों को अच्छी तरह से साफ करना है, और एक ही दिन में नहीं, ये आपको दो दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के अब करते रहना है। तो एक ही दिन में रगड़ दोगे तो फिर वो फिर ड्रेसिंग के लिए जाना पड़ेगा आपको, एक ही दिन में पूरा नहीं करना है उसको, जितने धीरे धीरे हुआ वैसे धीरे धीरे आठ दस दिन तो लगेगा ही लगेगे। तो उसको अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर अच्छे साफ पानी से उसको वॉश करके उसको ड्राई करना है, स्पेशली उंगलियों के बीच में आपको अच्छी तरह से ड्राई करना है। देखा गया कि हम लोग सभी क्या करते हैं, जब हम नहाते तो बड़ा टर्किस का टॉवल लेके पूरे बॉडी को ड्राई करते हैं, लेकिन उंगलियों के बीच में कोई भी सुखाता नहीं है, और ये कारण बन जाता है ये वेब स्पेस फंगल इन्फेक्शन का। तो ये उंगलियों के बीच में हमको हमेशा ड्राई करना है, नहीं तो उंगलियों के बीच में क्या होता है, फंगल हो जाता है, और वो फंगल इन्फेक्शन होने के कारण क्या हो जाता है, फिर आपको ऊपर से दिखेगा नहीं, पैर ऐसे है आपको ऊपर से दिखेगा नहीं। जिनके पैर में न्यूरोपैथी है उनको दर्द भी नहीं होगा, इचिंग भी होगा, उनको पता भी नहीं पड़ेगा, और वो इन्फेक्शन ऊपर चलता जाएगा। कब पता पड़ेगा, जब आपका पैर रखने के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, पस दिख रहा है, तब आपको पता पड़ेगा, या आपके कपड़े खराब होते तब तक केस आपके हाथ से बाहर जाता है। तो इसके लिए आपको अपने पैरों को अच्छी तरह से ध्यान रखना। हमारे माताएँ हैं, हमारे स्पेशली हमारे भारत की, हमारे यहाँ की माता है, सभी माता है, क्या करती है, जब भी बाथरूम में जाएगी पैर को गीला किए बिना बाहर कभी भी नहीं आएगी, और पैर कभी भी पोछेगी नहीं, कभी भी नहीं। यहाँ कितनी माताएं बैठी पूछ लेना, उंगलियों के बीच में तो कभी भी पोछती नहीं। और खासकर ऐसा है कि हमारा स्नान करने का टाइम भले आधा घंटा है, पौना घंटा है, लेकिन जब तक हमारे पैर वॉश करने का टाइम आ जाता है तब तक हमारा टाइम पूरा हो जाता है, नहीं टाइम ही पूरा हो जाता है स्नान का, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, उंगलियों के बीच में टाइम नहीं है। ऐसा करेंगे तो फिर आपको एम्पिटेशन करके उधर आईसीयू में पड़ने के लिए टाइम मिल जाएगा 2-4 महीने तक, और फिर वो एक बार एम्पिटेशन होने के बाद क्या होता है, उसी जगह से फिर से इन्फेक्शन होता है, क्योंकि भगवान ने ऐसी कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में ऐसे खाली पड़ी, जैसे माताएं करती है थोड़ा सा सब्जी पड़ा है उसमें ऐड कर दो, ऐसा नहीं है। ये पलकों से लेके आप पैरों के नाखून तक सब कुछ हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके लिए अगर हमारे नाखून भी आप ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा दो, अभी 8 दिन पहले ही हमारे पांडवपुर का पेशेंट, उसको नाखून फुटबॉल खेलते वक्त नाखून टच हुआ है और ऊपर पूरा वो उल्टा हो गया है। इसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा नाखून बढ़ाना भी नहीं है, ज़्यादा काटना भी नहीं है, ज़्यादा 6 महीने का आगे काटोगे तो भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको नाखून को स्किन लेवल से ही काटना है, ये याद रखना है, और काटना ही है। अपने पैरों को अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है, रोज़ वॉश करना है। और क्रैक्स के लिए मैंने बता दिया है कि आपको फिर ड्राई करके उंगलियों के बीच में स्पेशली ड्राई करके उसमें पेट्रोलियम जेली लगाना है, पेट्रोलियम जेली स्किन डॉली के वो लगाओ तो बहुत अच्छा। ये तेल और ये बहुत सारे तेल, अभी सबके नाम नहीं लेती मैं, सारे तेल लगाने से क्या होता है, चींटियाँ आ जाती है, कपड़े खराब हो जाते हैं और बहुत जल्दी वो निकल जाता है, लेकिन पेट्रोलियम जेली आप लगा के सॉक्स पहनोगे तो कैसा भी आपके पैर में एड़ी फटी हुए तो भी आपका वो 8 दिन में तो ठीक होगा ही होगा। उसके बाद आप नैरो फुटवेयर जो पहनते हैं, बुनियन की होता है, उंगली के ऊपर उंगली चढ़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ये पैरों में बुनियन हो जाता है, मना हड्डी बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? अंगूठे के पास, क्योंकि जो लोग नैरो फुटवेयर पहनते हैं, मतलब आगे का हिस्सा एकदम तंग है, एकदम नैरो है, आपके उंगलियों को बैठने के लिए उसमें जगह ही नहीं है, जबरदस्ती आप कबड़ में कबड़े ठोस दो, एक निकालने के जाओ तो सारे गिरते हैं। उसी तरह से आपकी उंगलियां अगर आपके पैर में हिलेगी नहीं, आपके फुटवेयर में, तो क्या होगा, तो वो उतनी ही जगह में वो उंगलियां एडजस्ट हो जाएगी, और कहाँ कहाँ एडजस्ट होगी वो फिर उंगलियां टेढ़ी होने लगती। बहुत लोगों के आगे जो है टच करता है, शूज में टच करता है, उनके पैर में भी प्रॉब्लम हो जाता है, सारे नाखून उनके इन खराब हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी वजह से एम्पिटेशन होता है, तो वो सब हमको ध्यान रखना है। तो डायबिटीज पेशेंट के पैर, नॉन डायबिटिक को भी ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन डायबिटीज वालों को क्यों ध्यान देना है, क्योंकि डायबिटीज लोगों को इन्फेक्शन जो होता है वो मल्टीप्लाई होकर बढ़ता है, तुरंत बढ़ता है। अगर शुगर हाई है तो तुरंत वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और शुगर कब हाई होगा उसका तो कोई पता ही नहीं होता है। इसके लिए पैरों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। पर दूसरी बात, पैरों में जब भी आप फुटवेयर लेने जाओ तो शाम के टाइम पे फुटवेयर लेना है। जब हमने पहना तो क्या था, बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन बाद में नहीं आता है, क्योंकि वो टाइम सही नहीं था। शाम के टाइम में फुटवेयर लोगे तो आपका पैर उस वक्त सही इसमें होता है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करती मैं, हो गया टाइम। ओम शांति।
कैंप में तो इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, यहाँ पर भी एक बार करवा सकते हैं वापस। हाँ, क्योंकि ये 5-10 मिनट में कवर करने वाला टॉपिक नहीं है, तो इसीलिए इसको विस्तार से। हाँ, तो यहाँ जो है, किसी को भी डायबिटिस फुट, मतलब फुट केयर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ग्लोबल हॉस्पिटल में डायबिटिक फुट केयर एक अलग सा डिपार्टमेंट है, वहां जाके ललिता बहन से मिल सकते हैं, तो वो और आपको क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, 22 नंबर। ठीक है, अभी यशोदा बहन और समीक्षा बहन एक छोटा सा एक्टिविटी करवाएंगे।
ओम शांति। अभी जो कुछ भी सुना आपने तो उसको अभी हम एक्ट करके ड्रामा के रूप में हम आपको समझाएंगे।
तो हमारा जो ड्रामा है, ड्रामा का टाइटल रहेगा मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज, कि अगर डायबिटीज बढ़ जाए तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस ड्रामा में यशोदा बहन डॉक्टर है और 3 पेशेंट्स रहेंगे। एक पेशेंट होंगे सुशील भाई जो आंखों का रोल प्ले करेंगे, दूसरे पेशेंट होंगे दीदी वो किडनी का रोल प्ले करेंगे, और तीसरे पेशेंट होंगे त्रिवेणी दीदी, उनका पैरों का रहेगा। ठीक है, तो ड्रामा के थ्रू हम आपको जो मैसेज देना चाहते हैं आप उनको कैच करें, और फिर आपसे पूछेंगे कि आपने क्या सीखा। थैंक यू। ओम शांति।
डॉक्टर साहब नमस्ते, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप कैसे?
डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी आंखों में कुछ धुंधलापन दिखाई दे रहा है, कुछ काला काला दिखाई देता है, ठीक से नहीं दिख रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है?
ये कब से हो रहा है आपको?
ये जब से ये सीरीज चालू हुई है, लगभग पिछले 2-2.5 महीने से।
अच्छा, तो आपने कोई टेस्ट करवाया?
नहीं, टेस्ट अभी, मैं प्रथम बार ही आपके पास में आया हूँ।
अच्छा, तो आप एक काम करिए, जाइए अपना शुगर टेस्ट करवाइए और मेरे पास आइएगा। आप तो
ये कहाँ जाना है?
ये लैबोरेटरी जाना होगा आपको,
लैबोरेटरी।
तो कुछ फॉर्म से वो फिलअप कर लीजिए IPD में, फिर आपको आगे का प्रोसेस वो बताएंगे।
कहाँ पर है OPD? अपना लैबोरेटरी कहाँ है?
चाहिए
लैबोरेटरी। अच्छा, दूसरी जगह जाए लैबोरेटरी में।
ओम शांति।
ओम शांति।
आजकल है ना, 2 महीने से मेरे को थोड़ा ज्यादा बाथरूम ऐसे 200 ज्यादा आता है, फिर पैरों में बहुत दर्द होता है, स्वेलिंग होती है।
ये कब से हो रहा है आपको?
2 महीने से हो।
2 महीने हो गए। आपने कोई टेस्ट करवाया?
नहीं।
शुगर टेस्ट करवाया?
नहीं करवाया।
घर में किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है?
नहीं, घर में किसी को भी नहीं है।
तो एक बार आप जाके टेस्ट करवा के आइए, टेस्ट करवा के आइए।
ठीक है, ओम शांति। ऐसे मेरे को है ना पैरों में जलन सा होता है और झुंझुनाहट जैसे होती है, और जैसे कि वो चीटी सुई जैसे।
ये कब से हो रहा है आपको?
2-3 महीने से हो रहा है।
अच्छा, घर में किसी को डायबिटीज है?
माता जी को था, उसका 400 जितना रहता था, 400।
तो आपने अपना शुगर टेस्ट करवाया?
नहीं, करा लेंगे आप कहेंगे तो।
आप अपना टेस्ट करवाइएगा, शुगर टेस्ट करवाइएगा। ओके,
फ्री का सिक्का भी लगाना।
हाँ जी,
फ्री का सिक्का भी लगाना।
हाँ जी,
डॉक्टर साहब नमस्ते। आपने कल जैसे कहा था कि लेबोरेटरी में जाके अपने ब्लड टेस्ट कराऊं, तो सारी रिपोर्ट आ चुकी है?
मैं बता रहा है कि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है, तो इसके कारण आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है।
तो उसका क्या कारण है, क्यों हाई हुआ?
क्योंकि आपके आंखों तक ब्लड ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है।
तो वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है ब्लड?
ये इसलिए क्योंकि आपका शुगर लेवल हाई है, इसलिए।
तो कैसे हाई हो गया, उसका कारण क्या? कुछ खाया भी?
टेंशन के कारण। आप अपने डाइट पे काम नहीं करते हो? हाँ, ये जो सारी सीरीज आपने सुनी 3 दिन की, तो उसमें दीदी ने आपको बहुत सारी बातें समझाई होगी, तो इस पे काम करना है आपको। मैं आगे फिर बताऊंगी आपको। क्या इस तरह से दिखता है?
इससे थोड़ा कम दिखता है, ज्यादा ही दिख रहा है।
अच्छा, ये इसलिए होता है क्योंकि जब डायबिटी मतलब शुगर लेवल हाई होता है तो आंखों में इस तरह से दिखने लगता है, क्योंकि खून ठीक से ना पहुंचने के कारण, तो उनकी आंखें ऐसे हो जाती हैं।
ओके, तो इसके लिए कोई विशेष एक्सरसाइज वगैरह?
हाँ, वो जो दीदी ने बताया आपको, तो उसको फॉलो करना है।
चलो ठीक है, लो अभी दूसरे पेशेंट आ गए आपके।
आपका भी शुगर लेवल हाई दिखा रहा है, 400 से भी ज्यादा है। 400? जी, तो ये इसलिए हो रहा है, आपके पैरों में सूजन है, क्योंकि आपकी जो किडनी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है। नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, ये इसलिए। इंटरप्ट मत करिए प्लीज, क्योंकि किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना, खून को प्रॉपर फिल्टर करता है। अगर वो फिल्टर नहीं कर पाता है, जो बॉडी का जो ग्लूकोज है मतलब वेस्ट के साथ सारा सब कुछ जा रहा होता है, इसलिए किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। तो उसके कारण हमारे लंग्स में पानी भर जाता है, और फिर और चेहरे पे एक सूजन आ जाती है, क्योंकि ज़्यादा किडनी पे लोड हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी शुगर लेवल हाई है। ये आप अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करोगे तो फिर आपकी किडनी ऐसे हो जाती है, इसको हम कहते हैं नेफ्रोपैथी। और उससे पहले जो सुशील भाई ने जो बताया कि उनको प्रॉब्लम है आंखों का, उसको कहते हैं रेटिनोपैथी। जिनको प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, इसको हम कहते हैं रेटिनोपैथी, जिनको ठीक से दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाती हैं। और ये है नेफ्रोपैथी, जिनकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है हाई शुगर लेवल के कारण, तो इसे बीपी भी बढ़ने का चांसेस रहता है, तो ऐसे हो जाता है। हाँ जी, धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं अगर आप प्रॉपर अपने डाइट पे कंसंट्रेट नहीं करोगे, अगर मेडिसिंस प्रॉपरली नहीं लोगे और अपने एक्सरसाइज पे काम नहीं करो एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके बॉडी पे इफेक्ट करेगा। तो इन तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको फॉलो करना है। आपकी पहली किडनी ऐसे थी, खुश थी, बहुत खुश थी। हाँ, ऐसे हो जाएगी अगर आप प्रॉपर डाइट को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, तो ऐसे हो जाएगा। अब वो टेस्ट करवाना होगा आपको, टेस्ट से अभी पता चला ना आप आए। हाँ, तो अभी आपको रेगुलर मेडिसिंस लेनी है और कैंप अटेंड करना है। तो आपके पैरों में स्वेलिंग है, जब भी आप चलते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलता है कि कैसे आपके पैरों से चप्पल उतर जाती है, ये पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आपके पैरों में कोई सेंसेशन नहीं है, इसलिए क्योंकि आपके पैरों तक प्रॉपरली खून पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए सेंसेशन नहीं होता है।
जैसे रोलर से पैर ऐसे करते हैं, 2-3 मिनट करे तो आप समझते हैं कि आप उससे कुछ ब्लड भी जाएगा ऊपर?
आप कुछ भी करो वो होता नहीं है, क्योंकि आपके पैरों तक ब्लड ही सर्कुलेट नहीं कर रहा है, तो फिर वो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपके पैरों में अगर कुछ भी लग जाए, जैसे ललिता दीदी ने बताया कि अगर कुछ भी हो जाता है, एक स्मॉल इंजरी होती है, वो इतना बड़ा हो जाता है।
वॉकिंग करने से फिर वो ब्लड सप्लाई होगा? अच्छा सर,
नहीं, प्रॉपर डाइट पे कंसंट्रेट करना है, एक्सरसाइज और वॉकिंग और मेडिसिंस टाइम से लेना, इन सारी चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा।
शुगर कितनी आई है मेरी?
आपकी तो 300 से भी ज़्यादा है।
तो मेथी का मैं अगर पानी पी लूँ तो वो शुगर ठीक हो जाए?
अब वो आप डॉक्टर से ही। हाँ ये हम आपको फिर बताएंगे, अभी आपको इतना करना है, जस्ट हम आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं।
तो सूजन है तो मालिश ऐसा कुछ कर सकते हैं?
आप सुनिए, आपको क्या अभी देखिए, अगर अगर पैरों को अगर कुछ घाव भी हो जाता है ना, कि कुछ समझ में नहीं आता है, वो छोटा सा घाव इतना बड़ा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं न्यूरोपैथी। इस तरह से स्वेलिंग होने लगता है पैरों में, फिर बाद में एक छोटा सा घाव ऐसे हो जाता है। अगर हम अपने ऊपर अगर काम नहीं करेंगे, अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, प्रॉपर मेडिसिंस वगैरह, डाइट, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे, तो हमको ये बीमारी आ सकती है। तो ये सारा अवेयरनेस हमको 3 दिन के कैंप में पता चला, तो इसको हम फॉलो करेंगे, और जो कैंप अभी आने वाला है उसमें भी हम अटेंड करेंगे जिसको डायबिटीज की बीमारी है।
थैंक यू, आपने इतनी सारी जानकारी दी है।
डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं देह दान तो छूटे ग्रहण, तो अगर हम शुगर दान करें किसी को तो हमारी शुगर खत्म हो जाएगी?
ओम शांति।
विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। फिक्र नहीं ये दुनिया क्या कहती, क्या कहती। फिक्र नहीं ये दुनिया क्या कहती, क्या कहती। विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। ईश्वर से मैं शक्ति ऐसी मांगू, हर सुबह ईश्वर से मैं शक्ति ऐसी मांगू।
जीत सकूं इस जंग में हार कभी न मानू, जीत सकूं इस जंग में हार कभी न मानू।
विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अफसोस नहीं टाइफन होने का।
गर्व करूं मेरे जीवन में भेंट है अनमोल कोई, गर्व करूं मेरे जीवन में भेंट है अनमोल कोई, भेंट है अनमोल कोई, भेंट है अनमोल कोई।
विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। मधुमेह के साथ सफर में खास मित्र इंसुलिन है, मधुमेह के साथ सफर में खास मित्र इंसुलिन है।
इंसुलिन मेरे जीवन में एक अनोखी शक्ति है, इंसुलिन मेरे जीवन में एक अनोखी शक्ति है।
विश्वास है